الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واقعہ ہے سن 1981 کا, دارالعرفان منارہ میں حضرت شیخ مکرم رحم اللہ تعالی, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں مزید بلند فرمائے, جماعت کے ساتھ دارالعرفان منارہ میں اعتکاف میں تشریف فرما تھے, کافی تعداد میں ساتھی تھے. ہم بھی کراچی سے اعتکاف کے لیے منارہ میں پہنچ گئے شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل کرنے کے لیے, تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے کراچی سے منارہ اعتکاف میں آ گئے. تو اس وقت کے جو اکابرین تھے وہ پرانے ساتھی جانتے ہیں, ایئر فورس کے ورنٹ افسر مختار صاحب اور حافظ غلام جیلانی صاحب چکوال کے اور حکیم صادق صاحب, یہ فیصل آباد کے تھے, یہ اکابرین میں تھے. میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اعتکاف میں آرام سے بیٹھوں اور اللہ اللہ کرتا رہوں, شیخ مکرم رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھ کے آپ کی آواز و نصیحت بھی سنتے رہیں اور فائدہ بھی اٹھائیں. لیکن ان اکابرین نے کہا کہ صداقت علی کراچی سے آیا ہوا ہے, وہ کھڑا ہو جائے, کدھر ہے؟ میں چھپ گیا تھا. بہرحال انہوں نے مجھے کھڑا کیا اور مجھے انتظامی امور میں شامل کر لیا. انتظامی امور مشکل بہت ہوتے ہیں, غلطیاں بہت سرزد ہو جاتی ہیں, اس میں محنت بھی بڑی کرنی پڑتی ہے لیکن اجر بہت زیادہ ہوتا ہے. کھڑے ہو گئے الحمدللہ. تو باورچی خانے میں بھی ڈیوٹی تھی, ساتھیوں کو بھی کھانا کھلانے میں حضرت شیخ مکرم رحم اللہ کے ساتھ بھی میری ڈیوٹی لگائی کہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کو کھانا بھی کھلانا ہے, وضو بھی کروانا ہے اور آپ کا خیال بھی رکھنا ہے. یہ ڈیوٹی بڑی اعلیٰ قسم کی تھی. میں نے سوچا شکر اللہ تعالیٰ کا, حضرت شیخ مکرم رحم اللہ کی خدمت کا موقع تو ملا. بہرحال میرے دل کے اندر یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھوکتے تھے تو صحابہ اکرام تھوک اپنے ہاتھ پہ لے کے اپنے جسم پہ مل لیتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو صحابہ اکرام دوڑ دوڑ کے اس وضو کا پانی جو ہے نا وہ حاصل کرنے کے لیے تڑپتے تھے اور بدن پہ بھی ملتے تھے, پیتے بھی تھے. تو یہ پڑا ہوا تھا میں نے اور بڑا دل چاہتا تھا کہ حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نائب رسول ہیں, ہمارے مشائخ میں اعلیٰ درجے کے مشائخ ہیں, تو کیوں نہ شیخ مکرم رحم اللہ علیہ کا وضو کا پانی حاصل کیا جائے اور اس کو بدن پہ بھی ملا جائے اور اس کو پیا بھی جائے. تو یہ اکابرین جن کا میں نے ابھی آپ حضرات سے ذکر کیا ہے, ان کے سامنے میں نے یہ بات عرض کی کہ میں شیخ مکرم رحم اللہ کا وضو کا پانی لینا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں نہیں ایسا نہیں کرنا, بڑی گستاخی ہے, حضرت شیخ مکرم رحم اللہ ناراض ہو جائیں گے, آپ کو ڈانٹی پڑ جائیں گی, یہ کام صحیح نہیں ہے, ایسا نہیں کرتے. میں نے دل میں سوچا کہ ان کو تو تصوف کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یہ کیا جانے تصوف کیا چیز ہوتی ہے, یہ کیا جانے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہوتی ہے, ان کو کیا پتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نائبین ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح ان کے مطلب شاگردوں نے پیش آنا ہے. میں نے سوچا یہ ٹھیک ہے, انہوں نے منع کر دیا اپنی جگہ پہ. میں نے اپنے دل کے اندر ٹھان لیا کہ شیخ مکرم رحم اللہ کا وضو کا پانی لینا ہی لینا ہے. ایک روز میں نے وہ جس میں آٹا گونتے تھے تسلی سی ہوتی ہے وہ لے جا کے میں نے غسل خانے میں رکھ دیا جہاں شیخ مکرم رحم اللہ کو وضو کرواتے, اور وہاں پہ دو بڑی بڑی بوتلیں بھی رکھ دی, دروازے کے پیچھے چھپا دی تینوں چیزیں تاکہ نظر نہ آئے شیخ مکرم رحم اللہ کو. جب میں شیخ مکرم رحم اللہ کو اپنے آپ کے کمرے سے اٹھا کے لایا اور وہاں پہ کرسی پہ بٹھایا, کرسی کافی اونچی تھی, آپ کافی بیمار رہتے تھے, کرسی پہ بٹھانے کے بعد میں نے لوٹا ایسے اٹھایا ہاتھ دھلوانے کے لیے, میں نے ہمت کر کے عرض کیا حضرت وضو کا پانی چاہیے. आपने फौरन ही जवाब दिया उस वक्त, वत किस शय च लेसो, और बड़ी खुशी का इजहार फरमाया। मैंने सोचा देखिए उन्होंने क्या कहा था, और शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत और हमारे साथ लगाओ और ये सुन्नत सहाबा जो मैंने करने की कोशिश की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह ने फौरन मतलब फरमाया वत किस शय च लेसो। तो चूँकि मैंने बंदोबस्त पहले किया हुआ था, मैंने फौरन वो तसला उठाया जिसमें आटा गूंथता था वो नीचे रखा, और लोटा उठा के शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह के वुज़ू करवाता रहा अच्छी तरह। जब पाँव का मामला आया तो शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह ने तालीम भी दी ना हमें, सिखलाया भी दीन कैसे चीज़ होता है, फरमाया लोटा मैनू फड़ा दो, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब वुज़ू किया जाए तो बर्तन अपने हाथ से हो, लोटा अपने हाथ में हो। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथ से मतलब लोटे से वुज़ू किया करते थे। तो चूँकि मैं बीमार हाँ इस वास्ते तुसी कराता हूँ मैं पानी पावांगा तुसी पाओ, तो हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह ने लोटा पकड़ा और पानी डालते रहे और मैं पाँव धोता रहा, फरमाने लगे कि उंगलियों के दरमियान में खला करो, खिलान करो उसको दरमियान में उंगली डाल ताकि पानी पहुंच जाए सही। तो मैंने ऐसे ही किया, फिर फरमाने लगे कि नीचे एड़ी आपकी मतलब कि वो उसमें दरारी सी कुछ आई हुई थी बीमारी की वजह, फरमाने लगे इसमें इनको अच्छी तरह से मलो ताकि हर जगह वुज़ू का पानी पहुँच जाए और वुज़ू सही माने में हो जाए। तो वो मैंने हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह को वुज़ू करवाया, और फिर हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह को दिल के अंदर मैं बड़ा खुश हुआ और अल्लाह ताला से बड़ी या अल्लाह दिली मुराद पूरी कर दी तूने। तो हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह को मैंने उठा के और फिर आपके कमरे में जाके बिठाया, वहाँ पे बिठाने के बाद जल्दी से भाग के वापस आया, ये ना हो कि ये मेहनत ज़ाया हो जाए और कोई साथी यहाँ के आके और इस पानी को उंडेल दे। तो मैं जल्दी से आके वो पानी मैंने बोतल के अंदर भरा दोनों में, भरने के बाद उसी वक़्त मैंने एक घूट पी भी लिया और अपने चेहरे पे भी मला। तो वो घूट पानी का पीना था, यकीन करें कि अल्लाह ताला के सिवा पूरी दुनिया का खौफ दिल से ख़त्म हो गया। क्यों, पानी किसके वजू का पानी था, अल्लाह ताला की बरगजीदा हस्ती थी शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह, छोटी मोटी चीज़ नहीं थी, आलमे दीन भी थे, बहुत बड़े अल्लाह के पहुँचे हुए बंदों में से। तो वो पानी पीना था और एकदम मतलब है कि, लेकिन एक चीज़ का ख्याल दिन में आया कि अल्लाह ताला के जो बरगजीदा बंदे होते हैं उनके अदब का ख्याल लाजमी रखना है, कहीं गुस्ताखी ना हो जाए कहीं भी किसी भी मामले में। तो वो वुज़ू का पानी अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैं वो कराची में ले गया छुपा के, और कराची में जो मेरे साथ साथी थे उनको भी दिया, उन्होंने भी पिया। फिर अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह की बरकत से और जमात की बरकत से 5 बेटे अता फरमाए। वो वज़ू का पानी जैसे घूटी देते हैं ना बच्चा जब पैदा होता है, तो कोई शहद चटाते हैं आजकल के दौर में, कुछ खजूर मतलब है कि चबा के उसका मतलब है कि उंगली लगाते हैं बच्चे, तो 5 बच्चों के मैंने वो वज़ू का पानी डाला पैदा होते ही ताकि उनको हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह का वज़ू का पानी पेट में पहुँच जाए और वो भी मतलब है कि नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दें, वो भी इस लाइन में लग जाएँ। तो ये एक वाक़या था उसका इत्काफ़ का। उसी दौरान में ऐसे होता था कि हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह 2 टाइम ज़िक्र करवाया, खुद ज़िक्र करवाते साथियों को, और उसके अलावा 2 टाइम ज़िक्र ये अकाबरीन जिनके मैंने नाम लिए तीनों इस वक्त हाजिर नहीं हैं, पुराने साथी जानते हैं वो कहाँ हैं और उनका क्या किरदार था। तो 2 टाइम वो ज़िक्र करवाती है और ज़िक्र भी बड़ा लंबा लंबा और तकरीरें भी, और जून जुलाई का महीना था, इतनी शदीद तरीन गर्मी थी, बुरी हालत होगी, काम भी करते साथियों का, किचन में भी काम करते, बर्तन भी धोते। अब्दुल हमीद साहब हैं डेरा इस्माइल खां के कच्ची मले खेल के वो मेरे साथ होते थे। और हजरत की जो ड्यूटी है वो तो बड़ी खुशी से संभालते, लेकिन बदन इतना थक जाता था कि मैं एक दिन गैर हाजिर हो गया उस जिक्र में, दोपहर के जिक्र में। वरंट अफसर मुख्तार साहब ने बड़ी डांटी मारी, आप गायब क्यों होंगे? मैं क्या, बस ऐसे थकावट थी, थोड़ा सा लेट गया, नींद से आ गई। बहरहाल बात ख़त्म होगी, अल्लाह का करना कि वो दिन तो निकल गया। दूसरे दिन शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह असर के टाइम पे तशरीफ़ फरमाते, जैसे हजरत जब सेहतमंद थी तो हजरत भी असर के बाद साथियों में बैठते थे और साथियों को फैज़ पहुँचाते थे। तो हजरत बस बैठे हुए थे तो हजरत ने फरमाया कि कौन है जो मेरे अलावा बड़े शेख बने हैं? गर्मी का मौसम है, देखा नहीं साथी गर्मी में, मतलब कि मैं खुद जिक्र करा रही हूँ दो टाइम, मेरे होंगे कि जरा मतलब बड़ा आ गया तो जो देने वाले आ गए। तो बड़ी हजरत ने वहाँ पे मतलब इस किस्म की बातें की, और वो दोनों जिक्र दोपहर का और वो असर के बाद वाला वो ख़त्म करवा दिया। जैसे कि मुकर्रम रहमतुल्लाह बेनफ्स नफीस दो वक्त जिक्र करवाते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाक़या था। एक और छोटा सा वाक़या कराची का है। तो पहले पहले मराकज़ नहीं थे, घरों में ज़िक्र हुआ करता था। तो हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह कराची तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने मकान थोड़ा सा कुशादा दे दिया था, नेवी का ही मकान था। तो उस मकान में हज़रत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह तशरीफ़ लाए मेरे मकान में, तो जिक्र करवाते रहे थे। और मगरब के टाइम जिक्र के बाद फौरन फरमाते कि साथियों कहें कि मस्जिद में चले जाएं, तो साथी मस्जिद थी, साथी जाके नमाज पढ़ते मस्जिद में। फरमाते कि थोड़े साथी ठहर जाएं, दो चार जो मेरे साथ, मैं बीमार हूँ, मैं मस्जिद नहीं जा सकना, मैं इतने जमात कराऊँगा, जमात दस सवा मिल गई। तो एक रोज़ है शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह ने फरमाया सदाकत अली साथी को बिठाए रखना, भेजना नहीं। तो साथी तो हिलते नहीं थे बगैर गए हुए। अभी देखें आप भी मतलब कि यहाँ से जाएंगे नहीं, हज़रत क़िबला बेग साहब मुद्दज़लू की मैयत, मर जाएंगे, कट जाएंगे, गर्दन कटवा देंगे, लेकिन मैयत नहीं छोड़ेंगे। तो यही उस वक्त भी कैफियत थी, और ये अच्छी बात है, तसव्वुफ़ में ऐसे ही होता है, शेख की सोहबत में बैठना बड़ा अजर मिलता है, बड़ा मदद। तो हजरत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह साथी बैठे थे, हजरत शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ 5 या 6 मिनट साथियों को नसीहत फरमाई, फरमाया बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्फाज कुछ इस किस्म के मफहूम था कि उलमा का तबका अपने कौल और फेल में तज़ाद की वजह से अपनी हैसियत खो चुका है। खुदारा आप इस पाकीज़ा सूफिया इकराम की जमात में आपने कदम रखा है, अपने कौल और फेल की वजह से इस सूफिया इकराम की जमात को बदनाम न करना। शरीयत मुतहर्रा पे मुकम्मल अमल पैरा होने की कोशिश करना, दोनों वक़्त जिक्र नागा न होने पाए, 5 वक़्त जमात की नमाज पढ़ने की कोशिश करना। फिर फरमाया कि शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की पूरी पूरी कोशिश करना, सुन्नत कोई तर्क ना हो, और सुन्नत मौकदा 5 वक़्त की नमाजों में छोड़ना नहीं, ज़रूर पढ़नी है। और फिर बाकायदा आपने गिनवाया कि सुबह की 2 सुन्नत सुन्नत मौकदा, जहर की 4 सुन्नत और 2 सुन्नत सुन्नत मौकदा, मगरब की 2 सुन्नत सुन्नत मौकदा और इशा की 2 सुन्नत सुन्नत मौकदा, इनको तर्क ना होने। आपस में भाई भाई बन के रहना, किसी को नफ़ा नहीं पहुंचा सकते तो खुदारा नुकसान पहुंचाने की कतन कोशिश ना करना साथियों। जो कुछ ही मिलता है वो शरीयत पे अमल करने की वजह से मिलता है, जो दर्जात मिलते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में मिलते हैं, खुदारा इससे ना हो पाए। ये मुख्तसर था बयान था शेख मुकर्रम रहमतुल्लाह का, अल्लाह तबारक ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें हजरत दोनों हस्ती हैं, हजरत قبلہ بے اقصہ مجلو شاہ صاحب مجلو کی قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص سے دل کی گہرائیوں سے دونوں ہستیوں کا ادب کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ چھوٹی موٹی ہستی نہیں ہیں. آپ حضرات کے پاس کتاب آ چکی ہے مکتوبات شیخ, اس میں حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط ہیں, بڑے کام کے خطوط ہیں. خدا را اس کتاب کو الماری کی زینت نہ بنائیے, اس کو پڑھیں, اس کو دل سے لگائیے. انہی خطوط کے اندر شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قبلہ بیگ صاحب کے متعلق فرمایا ہے کہ جس سے حضرت بیگ صاحب ناراض, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اس سے مشائخ ناراض, جس سے بیگ صاحب ناراض, اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض, جس سے بیگ صاحب ناراض, اس سے اللہ تعالیٰ ناراض. اور حضرت انہی خطوط کے اندر آپ کی حیثیت ہے, آپ کو کیا کچھ اتھارٹی عطا فرمائی ہے ساتھیوں کے مراقبات کی, ساتھیوں کو بیعت کرانے کی, مناجل تعلق بنانا ہے. اپنی زندگی میں حضرت شیخ مکرم رحمۃ اللہ علیہ نے قبلہ بیگ صاحب کو کیا کچھ عطا فرمایا ہے, تو ہم بھی اسی طریقے سے باادب ہو کے بیٹھے اور ظاہری نہیں, قلب کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ ادب کریں اور آپ کی نصیحت پہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. واہ.